शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं।
सबसे पहली बात है कि मुझे खुद के उद्धार की इच्छा हो, हमें तो भाई इसे ऊंचा उठना है। राग द्वेष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता ये जो थपेड़ा लगता है बार बार, इससे ऊंचा उठना है अपने। इसमें अगर बरोबरी सुख दुख होता है तो मनुष्य में और पशुओं में फर्क क्या हुआ? पशु पक्षी जितने जंतु है छोटे बड़े अनुकूलता से खुशी होते हैं, प्रतिकूलता से दुखी होते हैं। वृक्ष होना भी ज्यादा पड़े ज्यादा गर्मी पड़े क्यों लग जाते हैं, और जल मिलता है राजी हो जाते हैं। इसमें भी ये दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है क्या इच्छा छिपा हुआ है। खेती है, पत्ते में कोप है, वृक्ष है, जल मिलता है उस समय में वो ये बहुत सुंदर जी से वर्षा हो जाए और जल मिल जाए तो खिल उठते हैं। रात में वर्षा हो गई तो कल वर्षा नहीं थी, जब समझो खेती कैसी थी, और रात में वर्षा हो गई आज सुबह देखो कैसी हो जाती है, फर्क पड़ता है नहीं। तो अनुकूलता प्रतिकूलता का फर्क स्थावर पर भी पड़ता है, जंगम पर भी पड़ता है, चलने फिर वाले जीवों पर पड़ता है। ये स्थायी रहने वाले जीव है, पौधा है, घास है, वृक्ष आदि ये, इन पर भी पड़ता है। तो इनके पढ़ने से खुशी और दुखी होना ये सब में होता है। कुत्ते कोई प्यार से बोलो को राजी हो जाता है, दुष्कार हो तो नाराज हो जाता है, तो उसके चेहरे पर फर्क पड़ता है। ऐसे हमारे भी आदर में निरादर में फर्क पड़ता है, तो फिर हमारे में और कुत्ते में फर्क क्या हुआ? मनुष्य जो नहीं वो है इन दोनों से ऊंचा उठ जाए। कभी तो ऐसा आने जाने वाले में राजी राजी क्या होता है, जैसे रात आ गई कभी दिन आ गया, दिन आ गया फिर रात आ गई, ये तो आती जाती रहती है। इनमें क्या तो राजी हुई क्या नाराजी हुई? दिन में काम होता वो रात में नहीं हो सकता तो नहीं होता भाई, अब रोने से क्या हो जाएगा? दुख क्या हो जाएगा? रात होगी तो प्रकाश करो भाई, रात में लाओ बेट से लाओ आग दो उसको तो करो, अगर प्रकाश करना हो तो ये तो ठीक है, पर दुखी होने में क्या फायदा है? दुखी होने से और उपाय भी नहीं सूझेगा। दुखी होने से अंधेरे में कैसे काम करे इसका उपाय भी नहीं सूझेगा। दुखी जाओगे दुखी नहीं होने से उपाय सुझाओ, उपाय करो भाई काम करो, नहीं घबरा जाओगे तो घबराने से क्या फायदा हुआ? और भी फायदा कर सकते उसे वंचित हो गए। अगर दुखी नहीं हो तो भाई इसमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो उस परिस्थिति में काम करो, ऐसे करो भाई, इसमें ऐसे करो ऐसे करो। तो मनुष्य जन्म है इसे ऊंचा उठने के लिए। ये विश्वास है कि नहीं आपको कि भाई हम ऊंचा उठ सकते हैं, हम नुकसान होने पर भी दुखी नहीं हो ऐसे हो सकते हैं, और नफा होने पर सुखी न हो ऐसा भी हम हो सकते हैं। ये समान हम सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ हो जाए उनको समान हम कर सकते हैं, ऐसा आपका विश्वास होता है कि नहीं? पहले ये नहीं होता मेरे, ये तो होता ही है। पढ़े लिखे सत्संग करने वाले कई आदमी है, उनकी ये जची हुई है कि ये तो हो गई सुख दुख तो हो गई, आपकी क्या जची है? ये ऐसा ही रहेगा कि फर्क पड़ सकता है? क्या पता इस बात का? भय रोज होना रावण मारा और वही रीस आ गई रावण को मार दिया है, फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ता है कि नहीं बताओ भाई? है ऐसे फंस पड़ते हो, उसे क्या सबूत क्या है, उसके प्रमाण बताओ। तो इसमें ये सिद्ध होता है कि जिसमें फर्क पड़ता है वो नाशवान होती थी। तो ये सर्वथा ही न हो ऐसा भी हो तो सकता है ना। बोलो। अच्छा, रुपया होने से सुख हो जाएगा, हमारा नाम होने से सुख हो जाए, ये बात भी है। तो रुपयों के लिए चेष्टा करे मेरा मान सत्कार हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, ये भी सबक होती है। तो रुपयों से सुख हो जाएगा अभी, जो बात है ख्याल कर रहा, बात को ख्याल कर रहा, सुनो। रुपया कितना ही हो जाए तो रुपया से क्या होता है, कमुक चीज चाहिए तो रुपया होता मैं लिया हुए, और रुपया नहीं है तो कहा से ले गए, ये तो फर्क पड़ेगा, ये तो रुपया होने से फर्क पड़ेगा
जी।
परंतु दुख मिट जाएगा क्या, प्रतिकूल परिस्थिति आने से दुख नहीं होगा, अनुकूल आने से सुख नहीं होगा, ये सुख दुख मिट जाएगा क्या। गीता में सुख दुख का दो तरह से वर्णन आया है, एक तो बताया है कि द्वंद्वी विमुक्ता सुख दुख संज्ञा, सुख दुख संज्ञक द्वंद्व से रहित है, ऐसे अव्ययम पदम गच्छन्ति, ऐसे पुरुष अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते। द्वंद्वी विमुक्ता सुख दुख संज्ञा, सुख दुख से रहित है, ध्यान देना सुख दुख से रहित का। और एक बताया समुख सुख स्वस्थ, सुख दुख समान है, तो समान है रहित है जब सुख दुख नहीं है, ऐसे समान है जब सुख दुख तो है, फर्क दोनों में। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख से रहित है वो, तो सुख दुख है ही नहीं। और समुख सुख है स्वस्थ है समोषास्म कांचन है, तो ये जो होता है समदुख सुखम धीरम सोम सत्ताय कल्पते, तो सुख दुख सम है, तो सुख दुख तो है और वो भीतर से सम है, एक सुख दुख रहित है, ये दो तरह से वर्णन आया। तो सुख दुख रहित होना, हम अलग तरह से रहित हो गए, हमारे पास नहीं आए, आपके आए तो आप जानो, हमारे नहीं आए, ये ऐसा क्या। तो सुख दुख रहित होने क्या हुआ, देखो जैसे रुपया है ऐसे आदमी पास आदमी कहते बड़ा सुखी आदमी है, इतना रुपया है, बेटा पोता है, घर है, सब चीजें हैं इसके पास, बड़े सुखी है, और घर में महाराज खाने को नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है ठीक, तो वह आदमी बड़ा दुखी है बेचारा, इसकी कोई चीज नहीं है पास में। अब ये बात हुई एक, तो एक तो वस्तुओं के कारण से सुखी है और एक वस्तुओं के न होने से दुखी है। तो ये सुख दुख तो धन से सुखा जाता है, दुख मिट जाता है, परंतु तो ये सुख दुख नहीं है, ये तो रात और दिन की तरह आने वाला जाने वाला है, ये रहने वाला नहीं है, न सुख रहने वाला है न दुख रहने वाला है। भीतर जो चोट पहुंचती है खराब लगता है ये है दुख, और भीतर चोट नहीं पहुंचे ये सुख, बेटा मर जाए भीतर चोट नहीं पहुंची तो दुख नहीं हुआ, तो वो दुख नहीं हुआ, पोता जन्म या दुख नहीं हुआ, तो ये भीतर के सुख दुख से रहित है और बाहर में सुख दुख में समान है, तो दोनों का एक ही हुआ। तो बाहर का सुख दुख है उसमें तो रुपया पैसा मान आदर सत्कार ही कारण है, पर भीतर का सुख दुख कैसे मिटेगा इससे, और सत्संग से भीतर का सुख दुख मिटता है, इस सुख सुन से होता है। तो सत्संग से जो लाभ होता है वो उसमें से लाभ नहीं होता, परंतु मनुष्यों की प्रवृत्ति आप देखो, सत्संग हो तो सत्संग कर रहेंगे, परंतु रुपया पैदा होगा तो सत्संग छोड़ देंगे। अब क्या फायदा है, एक और नहीं मिलती रुपया मिलता है। तो उनके हृदय में रुपयों का सुख जचा हुआ है, सत्संग से सुख जैसी बस नहीं है। अगर जची हुई हो तुझे पता होता है कोई बात नहीं, पैसे कमा लेंगे, नाग महिला तो आ जाए, कोई बात नहीं, सत्संग मत छोड़ो। वो सत्संग करता है, अब ये अनुभव होने से होता है, अनुभव नहीं हो केवल कहने से सुन लेगा, सीख लेगा, कह लेगा। जैसे पढ़ाई करी वेदांत की, पढ़ाई करती तो ये रस्सी में सांप है, ये सांप क्या है, ये अध्यास है। तो क्या है, अर्थ अध्यास है और अयम सर्प, ये सर्प है, ऐसा ज्ञान हुआ ना, ये ज्ञान अध्यास है। अब इसे सीख लेने से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अर्थाध्यास है, ज्ञान अध्यास है।
थोड़ा बहुत
संस्कार तो पड़ता ही है, संस्कार पड़ता है, विद्वान हो जाएगा, व्याख्यान दे देगा, पुस्तक ले देगा।
नहीं, आध्यात्मिक थोड़ी तो उन्नति होती होगी।
और कैसे होगी उन्नति,
जब ये समझेगा कि भाई ठीक है ये ब्रह्म का विवर्त मात्र है, तो उतना तो ज्ञान आएगा कि ठीक है।
अच्छा, ज्ञान होने से दुख मिट जाएगा,
वो संसार के माया मोह में जो पड़ा हुआ उसकी अपेक्षा तो उसको थोड़ा
नहीं, उसे उसकी क्या लाभ हुआ, एक बात सीख गया, फिर क्या बात, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है कि नहीं,
उसकी अपेक्षा कुछ कम नहीं पड़ेगा
ना। दृष्टि अगर उसकी मुक्ति की हो गई तो फर्क पड़ेगा बहुत थोड़ा, कि मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है, बोध प्राप्त करना है, हमें तो इससे तत्व ज्ञान होगा, ऐसा वहम होता है। अगर उसमें पशु पड़ता है तो उसे थोड़ा फर्क पड़ेगा, मामूली। मेरे बजाय इच्छा थी ऐसी कि बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए, जीव रूप हो जाए, ऐसे। इसके बाद हमने पढ़ाई करी है और पुस्तकें पढ़ी है, और ये है ना अपने क्या नाम, बैराग प्रकरण, मोक्ष प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, योग वशिष्ठ नाम ही ऐसा देखो, नाम आसन योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ मैंने पूरा पढ़ा, पूरा पाठ कर लिया उसका, ठीक है। तो कई बातों का ज्ञान हो गया, कई इतिहास ज्ञान हुआ, कई बातों का ज्ञान हो गया, विचार साथ पढ़ लिया, पद से पढ़ ली, पढ़ा भी दूसरों को, अब इस लोग बोल देता हूँ, व्याकरण की बात बोल देता हूँ, तो व्याकरण का भी अज्ञान मिटा, ज्ञान हुआ, ये फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है व्याकरण से। व्याकरण न पढ़ने से संस्कृत का पता नहीं लग रहा था, अब पता लग रहा है उसका, इतना फर्क पड़ गया, इसलिए से उसे फर्क पड़ता है। परंतु जो राग द्वेष सुख मिटते हैं ये इतना फर्क नहीं पड़ता। आचार्य परीक्षा तक मैंने वेदांत पढ़ा, और वो पढ़ा जो भी ऐसा नहीं पढ़ा है कि तमाशाई पढ़ रहा है, खेल है, ऐसा नहीं है, उसमें इस दृष्टि से पढ़ा है कि दुख मिट जाए। पर मैंने देखा अपने, और जो मैं कहता हूँ इस प्रक्रिया से अगर आदमी ख्याल करे तो बिल्कुल फल पड़ता है प्रत्यक्ष। आपको ऐसे दोनों प्रक्रिया ठीक दिखती है, मान एक बार पुस्तकें पढ़ रहे हैं, पुस्तकें पढ़कर हम ज्ञान कर रहे हैं, वो ज्ञान, और एक सत्संग के द्वारा विश्लेषण सुन के इसको ज्ञान करें, ज्ञान बराबर ही है,
नहीं दोनों किसी अर्थ में बराबर,
ठीक है ना आपने, है जी। तो वो जो सत्संग के द्वारा ज्ञान है,
अब इनसे पूछो तो विचार सागर में नहीं बता सके, इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, सत्संग किया है, अभी पढ़ाई नहीं की है, वो विचार सागर तो विचार सागर को नहीं पढ़ा सकते, सब पुस्तकों का आवाज समझ नहीं आती बात। और विचार सागर पढ़ा हुआ विचार सागर पढ़ा सकता है, परंतु सुख दुख होने पर फर्क क्या पड़ता है, सत्संग क्रिया से फर्क पड़ता है, ग्रंथ से फर्क नहीं पड़ता।
उसके विचार सागर जो पढ़ा है
हाँ।
या और ग्रंथ जिसने पंद्रह वगैरह पढ़ी है
हाँ।
उसके सामने जो प्रतिकूलता है या अनुकूलता है उसकी वृत्ति में वो बात नहीं आएगी क्या?
अब वो तो बहुत तो
है, उसके बीच में ये बात नहीं आएगी क्या? ठीक है तो विवर्त मात्र है,
अब विवर्त मात्र सीखी हुई है बात, वो इसी काम नहीं देती, बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है। मैंने देखा हुआ है ना, अरे मेरी एक भगवान की कृपा है, बचपन से जरूर सीख रही है, मेरी रुचि नहीं बस बचपन में। अगर मेरे को कोई अच्छे संत मिलते, जैसे आजकल सत्संग में बातें सुनाता हूँ, ऐसे बचपन सुनते मैं चिपक जाता हूँ।
आपकी तो बात दूसरी,
मानी नहीं सीधी सी बात, तो एक नहीं सुन रही, एक ही बात जो समय
योग वासिष्ठ का जिसने अच्छा अध्ययन किया, उपसमाधि सब प्रकरण पढ़ लिए और वेदांत ग्रंथ पढ़ लिए, फिर यदि भी उसने बैठ के साधन नहीं किया होगा परंतु फिर कुछ न कुछ कुछ न उसकी बात तो
कुछ बात भी फर्क पड़ेगा, व्याकरण पढ़े व्याकरण पढ़ा हुआ नहीं दोनों फर्क पड़ेगा, ऐसे पढ़ा हुआ अन्य पढ़ा में फर्क पड़ेगा जरूर,
नहीं विवेचन में फर्क नहीं, उसके जीवन में फर्क,
जीवन में फर्क विशेष देखा
विशेष नहीं है,
विशेष नहीं। एक पहले से ये बात है कि अपने पर इसका प्रयोग करना है, ये धारणा ही नहीं रहती, पढ़ना है हमें ये ठीक ग्रंथ याद कर लेना है, ये धारणा रहती है, अपने पर प्रयोग करना है, अपने पर इसका आसन लाना है, ऐसा भाव होता है उसे थोड़ा फर्क पड़ता है, और केवल पढ़ा नहीं फर्क नहीं पड़ता, पर अपने रहना है करना है इससे फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, परंतु वो फर्क बहुत थोड़ा पड़ता है, और जो मैं बातें कहता हूँ बिल्कुल अपढ़ है वो, परंतु उसे फर्क पड़ेगा, पढ़ाई उसने नहीं की वेदांत की, भले मत करो वेदांत पढ़े उसे वो तेज देगा निकलेगा, वो उसे जीवन में विलक्षणता आ गई, ये मेरा विश्वास है, अरे आप भी मानते हैं उसको है, जितना अनुभवी पुरुष है उसके अनुभव के संग से, अनुभवी के संग से अनुभव होता है, वो एक विलक्षण होता है, दिखता है कि नहीं, मेरे तो संदेह नहीं इसमें, मैं तो पढ़ाई करते करते भी पढ़ाई में रुचि बढ़ी नहीं अपनी, और सत्संग करते सत्संग में रुचि बढ़ी है, और बढ़ी नहीं है बढ़ती चली जा रही है, इतनी विलक्षणता होती चली जा रही है कि जिसे मैं वर्णन नहीं कर सकता, ये बात आपको दिखती है नहीं पता नहीं होगा,
कहते हैं अच्छा लगता है तभी लोग आते हैं,
अच्छी बात ठीक बात कही आपने, बहुत ठीक कही बात, क्योंकि मनुष्य जो आता है तो कुछ कुछ लाभ देखता है, आता है बिना लाभ के कैसे आएगा, सूखी शिला कौन चाटेगा, अलूनी शिला कौन चाटेगा, किस बगैर क्यों कहेगा, मैं समझता हूँ बिना समझे भी आदमी का आकर्षण होता है, वैसा ग्रंथों पर आकर्षण नहीं होता, ग्रंथों की आप कथा करो ग्रंथों की पढ़ाई करो आकर्षण नहीं होगा उसमें, उस सत्संग की मार्मिक बातें कहो उन्हें भले पूरी मत समझो उन आकर्षण होगा, उनमें विलक्षणता होगी, ये हमारे तरफ से है, आप आपके जैसे कि नहीं जैसे पता नहीं है क्या जैसे
आप
है,
ये बात तो दृष्टि
है, दृष्टि है ना, तो फिर आदमी माथा पसी क्यों करे, अपने दुख मिटे जैसे करे, देखो मैं कई समुदाय में रहा और मैं बचपन से साधु हूं, मैं बचपन से चार वर्ष की अवस्था है, आप मेरे से छोटे थे किसी वक्त से, तो आप भी छोटे साधु हो गए, तो उन वर्षों में थी उसमें तुम्हें कुछ पता ही नहीं, क्या साधु होता है क्या गृहस्थ होता है क्या उद्धार होता है क्या पतन होता है कुछ पता नहीं, जानते ही नहीं थे, परंतु संस्कार से बड़े क्यों बात बताऊ आपको। मेरे मन में आया रामचंद्र जी महाराज ने ब्याह क्यों किया, मेरे को याद है बचपन की बात, उनकी क्या जरूरत थी ब्याह की, हरे के लिए नहीं आया और वहां राम जी के लिए याद आया, बचपन की याद है मेरे पास, क्यों ब्याह दिए, क्यों कैसे बने, क्यों मतलब। अब देखिए कितना ऊंचा हाथ घाला है, छोटा सोरा है, याद है तो वो जानता नहीं था मैं ब्याह क्या होता है, ब्याह नहीं जाने से क्या होता है, गृह होने से क्या होता है, साधुओं से क्या होता है, बात को जानता नहीं हो रहे, परंतु मन में विचार ऐसा आवे कि इसमें कोई शांति नहीं रहेगी, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, वो ठीक है बैठे, क्या क्या ठीक है, क्या बैठी, इनको नहीं भोजन कर सकता, भोजन कर सकता क्या, बच्चे तो क्या बोल रहे, ऐसे कथा सुनी है जो सगुण कथा सुनने के बाद मेरे को याद है एक दिन की, जो कई दिनों की बात है, एक दिन सुनता तो दोपहर के समय गांव में भी कथा होती है, मंदिरों में साधुओं के स्थानों में कथा होती, तो कथा होती थी उसमें भगवान कृष्ण के बाल लीला का वर्णन होता था, उस समय में जाना था अवश्य, तो वहां गया तो रोना रहा था, अब बच्चा छोड़े तो क्या वो क्या करे, जाना तो पड़ेगा, तो दिन याद है कैसे पूछ रहे थे, फिर रो गया और जाने के बाद खेल कूद ले गया, वही बात किसी को चिंता नहीं है कि वहां रहते हैं सुनते हैं, उस समय भी ऐसी बात हुई तो कोई ना कोई संस्कार था, जाए सगुण निर्गुण साकार निराकार इन विषय में संस्कार थे, तो फिर पढ़ाई में लगे थे कुछ पढ़े नहीं, पढ़ दे खेलते कूदते, खेल में बहुत रुचि थी, खेल अच्छा लगता था, अब क्या मिलता है उसमें बताओ, पर उसमें रस आता है, आनंद आता है, सुख होता है, ऐसा तो ये बात है भाई, तो ग्रंथों की पढ़ाई और जो सत्संग है ये मैंने दो बात समझ रखी है अच्छी तरह से, ठीक तरह से, निस्संदेह रूप से, कि ग्रंथों के पढ़ने से कोई शांति मिल जाए वो ये शांति नहीं मिलती, ऐसा भेद मेरे जिता हुआ है, मेरे लिए प्रेरणा करी है, अगड़ी ग्रंथ पढ़ो तो पढ़ा हुआ है हमारे ग्रंथ भाई, वही तो जाती है, अब पढ़ा तो वही है, जो ज्यादा पढ़े तो वही है, तत्व तो वही है, खंडन खंड खाद्य पढ़ा काफी पढ़ा, और परीक्षा देने से परीक्षा में था इसलिए पढ़ा, तो वो भी पढ़ रहा है, वेदांत ग्रंथ भी पढ़ रही है, ठीक है, उनके कथा करने में काम आए, कथा करने में दो चीज है, एक तो वेदांत पढ़ना, एकाध घटना काव्य पढ़ने से पुस्तक लगा लें, और वेदांत पढ़ने विषय विषय कर रहे हैं, इस दृष्टि से पढ़ा और उस दृष्टि से भी पढ़ा, ऐसा मिलेगा, परंतु सत्संग जब मिला असली जहां विचार होता है आदमी का उद्धार होता है, ऐसा सत्संग मिला तो फिर वो छोड़ नहीं सका, कई प्रतिकूलता आई परंतु प्रतिकूलता में वो छूटा नहीं मेरे से, अच्छी अच्छी प्रतिकूलता है, परंतु प्रतिकूलता आने पर भी नहीं छूटा, अपना स्थान छोड़ दिया, अपने रुपये छोड़ दिए, अपने अपना चेला चेली को छोड़ दिया, अपने जितने सत्संग को था वो छूट गया, आप तो जानते हो उस बात को, यदि भी आपका तो जन्म कैसे हुआ है ना, परंतु इस बात का तो ज्ञान है ही आपको, कैसे था मैंने वो बात का ज्ञान नहीं, तो सुना तो वही आपने, कथा करता था, भेंट लेता था, अच्छी तरह से गाना बजाना करता था, जागरण कर लेता अकेले पेटी लेकर के व्याख्यान देता था, परंतु व्याख्यान देते हुए व्याख्यान से अरुचि हो गई, व्याख्यान नहीं देना क्या करना, शेर जी की बातें सुनी, पुस्तक पढ़ा, शेर जी के लेख पढ़े कल्याण में, देख पड़े तो लगन का असर पड़ा कि ये केवल विद्या के पढ़े हुए नहीं है, ये अनुभवी पुरुष है। मिला नहीं है कोई, मिला हुआ मिला नहीं, ना तो शेर जी मिला हुआ मिला, ना शेर जी मिले, परंतु उनके देखो में देखा तो विचित्रता है। मेरी नहीं बताऊं, मेरे पंडित जी महाराज विद्या गुरु जी थे, उन्होंने तत्व चिंतामणि पहला भाग देखा, देख करके वो बोले, बिल्कुल उन्होंने शब्द कहे कि विचार सागर आगे से जितना लाभ नहीं होता जितने लाभ है। अरे मेरे कहते थे, अरे हिंदी का क्या देखता है, संस्कृत पढ़ा लगा हिंदी का क्या देखता है, ऐसे कहते थे। देखिए तो मेरे से लाभ बहुत विचार सागर आगे से नहीं है, ये हमारे विद्या गुरु जी कही हुई बात है, वे भी वेदांत जानते थे, ये बात उन्हें कही हुई है इतना लाभ नहीं। नारायण 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 तो सत्संग करने से आदमी में विलक्षणता आती है, इसमें कोई संदेह नहीं।
प्रश्न परम सत्य स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा भावना से देखा करती सत्संग 2047 श्री कृष्ण समर्पण के बाद परम सात दिनांक 24 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे में पुस्तकों के बाद बहनों से दिला पर हुआ।
नारायण 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 नारायण। देखो भाई एक मौका होता है, समय चूक पुण्य का पसीताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने, खेत सूख जाए फिर वर्षा हो तो क्या करी वर्षा हो, मौसम चूका मेहरा बेहर बरसर क्या करेंगे, फिर बरसे क्या होगा। जैसे वर्षा मौके पर होने से काम आती है और समय पर वर्षा नहीं है तो कुछ समय में वर्षा होने से कहा फागर के बूठे से क्या होता है। ऐसे अभी ये मनुष्य जन्म है, ये अपने उद्धार का एक समय है, एक मौका है, एक ऋतु आई हुई है, ऋतु पर फल होता है, ऋतु पर सब चीजें होती है, ऐसे मनुष्य जन्म की एक ऋतु है। अपने सिंह महात्मा में ऋतु है, ऋतु आ गई है तो ऋतु आ गई है बात। मनुष्य अपना उद्धार करना चाहे, सुधार करना चाहे, मनुष्य जन्म सफल करना चाहे तो अभी मौका है। मैंने खूब देखा है, श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा है दुर्लभम त्रय नहीं, तो तीन चीज बड़ी दुर्लभ है मनुष्य तुम, एक तो मनुष्य शरीर वो है, अरबी आदमी है चल रहा मात्र भूमंडल का, तो इतना तो एक खेत में कीड़े निकल जाए, छोटे छोटे जंतु हो जाए, कितने जन्म मनुष्य है, मनुष्य आराम से मनुष्यों के हजारों में कोई एक ही तभी करता है सिद्धि के लिए, सिद्धा में कोई एक ही जानता है। तो ये क्या है, कई लोग कहते हैं कि ये कठिन है दुर्लभ है, तो ये बात नहीं है, ये वस्तु स्थिति का वर्णन है। मनुष्य आराम सहसे वर्तमान में जो अवस्था है परिस्थिति है उसका वर्णन है, कोई एक ही यत्न के लिए सिद्धि करता है, सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वालों में कोई एक ही जानता है, ये वस्तु स्थिति का वर्णन है, कठिनता का नहीं है, और कठिनता नहीं है, कठिनता नहीं है। सुसुखम करतुं लिखा गीता में, सुख ही ब्रह्म संस्कृत अत्यंत सुखम स्थिति जैसा मह समुद्रता भवामी नसीरात पार्थ मैया वैशिष्ट, ऐसे मैं उद्धार करते हूँ सुखे न ब्रह्म संस्कृत अत्यंत सुखमस्त सुख पूर्व उसी प्राप्त होता है। सुसुखम कर तुम अभी हम करने में सुसुख है, सुखी नहीं सुसुखम, ये दुर्लभ नहीं है तेरे बहु नाम जन्मनावन तेरे कारण। तो क्या बहुत जन्म आपके हमारे नहीं हुए हैं, शास्त्रों के जैसे देखा जाते हुए हैं बहुत कोई बहु नाम जन्म नाम अंत्य जन्म नहीं, अंत जन्म है ये, अंतिम जन्म है मनुष्य जन्म है, पौष जन्मों का अंतिम जन्म है ये। एक बात बताऊं, आप ध्यान दें कि उसने इतनी कृपा करे, ये मनुष्य जन्म है ना, संसार कहां से शुरू हुआ कि मनुष्य शरीर में ही शुरू हुआ है, और कहां अंत होगा कि मनुष्य शरीर में ही अंत होगा। ये जन्म मरण का चक्कर कहां से चला है कि मनुष्य शरीर में चला है, और समाप्ति कहां होगी, मनुष्य शरीर में होगी। तो मानव शरीर दुर्लभ है, तीन चीज दुर्लभ बताए, मनुष्य शरीर दुर्लभ, और मनुष्य शरीर मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, ये चीज दुर्लभ है। हजारों मनुष्य में आप देखो ऐसी चीज दुर्लभ है कि मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी जोरदार चित्त में चटपटी हो, मन में लगी चटपटी कब न रखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, ऐसी चटपटी लग जाए इसमें तो ऐसी इच्छा दुर्लभ है। तो तीन चीज दुर्लभ बताई, मनुष्य पढ़ा दुर्लभ बताया, और मनुष्य शरीर मिलने पर, और ये मन में लालसा हो कि मेरा कल्याण हो जाए, ये दुर्लभ, और ऐसी इच्छा होने पर भी फिर दुर्लभ है महापुरुष संशय। इस तत्व को जानने वाले पुरुषों का संग, जो जानता नहीं वो क्या बताएगा, बता सकता है वो जिसने अनुभव किया है, जाना है, समझा है, ठीक अनुभव देखा है, वो ठीक ठिकाने की बात कहेगा, सुनी हुई बात है ना उसको पता नहीं है। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि भाई साथ में जूस में कितना अंतर, उसने कहा चार अंगुल का, जूस में साथ में कितना अंतर है कि चार अंगुल का है, चार अंगुल का है, यहाँ लगाओ कान के रहा था चार अंगुल, तो लोग आंखा देखी सची झूठी सुनी हुई देखी, तो सुनी हुई बातें कोई कह दे, सीख कर वो कह दे, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं है, अपना और लोग दुनिया का समय बर्बाद करना है, और कुछ नहीं मिलने का है। जिसने देखा है, सुना है, समझा है, तो भक्तों ने भगवान तोल कर ताया, भगत याद करके बधाया, ऐसे तोल के पाया, ठीक तरह से अनुभव किया उन बातों का, ठीक तरह से अपनी उम्र लगाई है, समय लगाया है, बुद्धि लगाई है, जिसमें ऐसा पुरुष मिलना मुश्किल। मनुष्य तुम मुक्ष तुम और महापुरुष संशय, ऐसे पुरुषों का संग, ये कोई धन से नहीं मिलता, संपत्ति से नहीं मिलता, सतवाई से नहीं मिलता, विद्या ज्ञान से नहीं मिलता, अनेक तरह की आप कला कौशल सीखे, उन कला कौशल से ऐसे कोई पुरुष मिल जाए ऐसी बात नहीं। एक धनी आदमी ने कहा था कि धन से सब कुछ मिलता है, सेठ ने कहा सब कुछ मिलता है, महात्मा नहीं मिलते, कि महात्मा कहीं आ जाए, कि महात्मा एक भी नहीं है उनमें, महात्मा होगा वो धन से आएगा नहीं, धन से आएगा वो महात्मा होगा नहीं, धन से धन के गुलाम आ सकते हैं, धन के गुलाम आ सकते हैं, धन का गुलाम नहीं होगा, धन से नहीं आ सकता, आ सकता है। हमारा असर किस पर है, हमें से कमजोर होगा, तो धन के विषय में कमजोर है उनको, उनको धन इकट्ठा कर सकता है, उनको धन का महत्व होता है, बल में कमजोर है तो बलवान का उस पर रख सकता है, विद्या में कमजोर है तो विद्वान का उस पर चल सकता है, बलवान का निर्बल के ऊपर बल चल सकता है, अपने से कमजोर पर सजोर का असर होता है, पर जोरवान के ऊपर निर्बल का असर नहीं पड़ता। तो उस परमात्म तत्व को जानने वाले उनके समान दूसरा कोई है नहीं, सनात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा मिलना दुर्लभ है, बहुत कम है। सतयुग त्रेता पर जो अच्छे धर्मात्मा युग थे, उन धर्मात्माओं के बीच में भी अपना कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा वाले बहुत कम मिलेंगे, उम्र के लिए तपस्या करते हैं, धन के लिए तपस्या करते हैं, मान बढ़ाई के लिए, पद प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं, पर मेरा कल्याण हो जाए ऐसे आदमी पुराने जमाने में भी कम हुए हैं। तो आज तो धर्मात्मा भी मुश्किल है, वास्तव में महात्मा कहाँ, उस तत्व को जानने वाले पुरुष दुर्लभ हो रहे हैं। तो वो तीसरी बात बताई वो दुर्लभ है। परंतु सज्जनों, मनुष्य तो मिला हुआ है, भाई बहन सब मनुष्य हैं, ये शरीर तो मिला हुआ है, और मुमुक्षा उतनी नहीं तो न सही, थोड़ी बहुत है जैसी वो कुछ इच्छा है, नहीं तो यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। यहाँ कोई धन नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, यहाँ कोई चीज ऐसी मिलती ही नहीं। तो परमात्मा तत्व के ज्ञान के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो ये भी है, इसका भी अभाव नहीं। अब रहा कि महापुरुष संशय, तो ऐसे काम करते करते कोई महात्मा भी मिल जाए। एक कहानी हमने सुनी है, याद आ गई। एक राजा थे, उसने प्रश्न किया कि महाराज हंसों की महिमा सुनते हैं, वो हंस कैसे होते हैं? जो दूध और पानी रखा जाए, ऐसे दूध तो पी जाए और पानी पी जाए छोड़ दे, ऐसे हंस है जो हम देखना चाहते। तो बहुतों को पूछा, एक संत को पूछा, तो संत ने कहा कि हंस को देखना चाहते हैं तो आपके ये बहुत मील तक बगीचा है, इस बगीचे में पक्षियों का सामान रखो, पक्षियों के लिए खाने का पीने का प्रबंध करो, सब तरह के पक्षी आवे ये प्रबंध करो आप, सब तरह के दाने बाजरी लेकर के वो बड़े बड़े मक्का तक ऐसे दाने रखो और खुले रखो, और वृक्षों के ऊपर पक्षी बैठे और कोई हल्ला गुल्ला ना हो, आदमी नहीं आओ, और जल रखो तैयार, उसमें दूध और पानी मिलाओ वो भी रख दो, और मोती भी जो भेदन किया हुआ नहीं ऐसे मोती भी रख दो, और आदमी को बैठा दो, कभी कैसे कैसे पक्षी आए। तो राजा ने काम शुरू कर दिया, कितना ही खर्च अपने करो, पक्षियों को बुलाओ। तो पक्षी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गए, पक्षी जाते हैं चुन चुन वहां जाते हैं, वहां से विश्वास में आते हैं, और जाते हैं वहां जाते हैं, ऐसे बहुत दूर तक समाचार फैल गया। तो तरह तरह के पक्षी आने लगे, आदमी बैठ देखते हैं तो मानव सरोवर तक ये समाचार पक्षियों द्वारा, पक्षियों को समाचार मिल गया। अब मानस सरोवर में रहने वाले हंस उनके अभी क्या है कि महाराज सब तरह के कहते, वहां हमारा चारा मोती भी है कि महाराज हमारे को पता नहीं है, परंतु उनका सबका प्रबंध है, जो ये भी जरूर होगा प्रबंध आप देखो। तो हंस वहां से आए, लाल चौंक है, लाल पैर है, सफा सफेद रंग है, ऐसे देखे हुए आए, वे मोती चुगने लगे और दूध पीने लगे। तो आदमी दौड़ कर जाकर कहते रहते कि महाराज हंस का दर्शन करो, तो आ जाए पहचान उसकी कि वे मोती चुगे, वेजन किया हुआ न हो, साबित मोती वो उनका हंसों का चारा है। तो आकर देखा तो राजा ने कहा बहुत अच्छा, हमारा प्रयास सफल हो गया। फिर भी उसने वही रखा सदावर्त पक्षियों के लिए, तो हम चाहते हैं कि कोई महात्मा मिले, कोई संत मिले, तो आप सत्संग का प्रबंध रखो, सब तरह के आदमियों के लिए प्रबंध, सत्संग सुनने का, प्रश्नोत्तर करने का, तत्वतात्विक बातें पूछने कहने सुनने का, ऐसा प्रबंध करो, और कोई भी आ जाए, कोई भी पूछे तो उसको ठीक समाधान हो, उनके मन में संतोष हो, ऐसा उत्तर मिले, इस तरह का प्रबंध रखो। तो संत जाएंगे, सुनेंगे तो यहां आएंगे। एक और संत की बात सुनी, एक माई के यहां संत ठहरे, वे जाने लगे तो माई ने कहा कि महाराज आप कब पधारेंगे, फिर क्योंकि दर्शन हो सत्संग हो। तो क्या माता जी तुम्हारा बिना लिखा कागज आ जाएगा तो आ जाए, बिना लिखा हुआ कागज आ जाएगा तो हम आ जाएंगे। तो बिना लिखा कागज कैसे होता, ठीक है बोले तुम्हारा वो संतों की सेवा करने लगे, सत्संग करे सेवा करे अपनी शक्ति के अनुसार पूरा जोर लगा रहे। तो संतों में बात फैली कि वहाँ सदाचारी है, सद्गुणी है, साधन करने वाले हैं, ऐसे पुरुष वहाँ हैं और सब तरह के संत वहाँ आते हैं, सबको अपनी सामग्री मिलती है, शास्त्र की अनुभव की बहुत बातें मिलती है, ऐसे संत आते हैं। ऐसे सुना वे संत थे बिना कागज कहे, वे संत उन्होंने सुन दी ऐसी बात कैसा है, तो कह भाई बिना कागज आ गया, चलो बिना लिखा कागज आ गया अब चलेंगे। तो वे आए महाराज कैसे बोले कि माता जी बिना लिखा कागज आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, लोगों में परंपरा से ऐसी बात है जो माता जी की कागज आ गया बिना लिखा इस बात का मांग है। तो देखो हंसों के दर्शन करना हो तो सब तरह की सामग्री रखो, और संतों को बुलाना हो तो सब तरह का सत्संग करते रहो, करते करते सत्संग ही एक सुगंधी फैलेगी, लोग कहेंगे कि वहां सत्संग होता है, और परंपरा से आएंगे जाएंगे तो असली संतों तक बात पहुंचेगी, तो वे भी देखेंगे भाई ऐसा सत्संग होता है तो हम भी देखें कैसा है। हमने एक बात पढ़ी थी कि बड़े अच्छे पहलवान होते हैं ना, वो कहा जाते हैं कि वह दंगल होता है, खूब अच्छी तरह से पहलवानों की परीक्षा होती है, इकट्ठे होते हैं, तो उनको कोई इच्छा न होने पर भी वे देखते हैं कैसे है। पहलवान थे तो वो पहलवान जाकर देखने लगे तो अच्छे अच्छे पहलवान आ गए। ऐसे ही भाई सत्संग होता रहे तो वहां आएगा, तो महापुरुष संशय है ये सत्संग होने पर वहां आते हैं। हमने देखा है ऐसा, सत्संग के विषय में हमने देखा है अच्छे अच्छे संत जिनकी प्रशंसा दूर से सुनते थे, ऐसे संत भी सत्संग में आ गए, स्वर्गाश्रम में वहां सत्संग होता था, तो ऐसे ऐसे संत भी हमारे वहां आ जाते थे, हम दर्शन कर रहे थे बातें सुन रहे थे। तो जहां ऐसा जमघट होता है खूब सत्संग का, तो वहां जानने वाले जानने की इच्छा वाले इकट्ठे होते हैं, जैसे पशुओं का मेला होता है तो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही ऐसे सत्संग होता है तो वहां कोई न कोई संत महात्मा जानने वाले जानना चाहने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, उनको कोई लेन देन नहीं है, कोई उनको साधन करना काम नहीं है, फिर भी पहलवान के दंगल में पहलवान जाते हैं, उनका कोई शिक्षा लेनी नहीं है, परंतु फिर भी ये देख देंगे कैसा होता है, ऐसे संत भी आते हैं, उस संतों को ढूंढते हैं देखते हैं, ऐसे संत आ जाए तो हम देखें मिले, ऐसी बात होती है। तो ऐसे पक्षी आ जाए इसलिए से ही संत आए, ऐसे ही संतों को खुराक मिले, उनकी खुराक होती है सत्संग, ये चीज वस्तु आदि के वे भूखे नहीं होते, इस बात की भूख है ही नहीं, इस वस्तु तो उनके पीछे दौड़ती है, रिद्धि और सिद्धि जाके हारे से खड़ी है आगे, कैसे भी सिद्धि सिद्धियां उनके चरणों में लौटती है, उनको उनकी परवाह नहीं है, उनको परवाह है सच्चे जिज्ञासु की, सच्चे हृदय से जिज्ञासा ऊपर जानना चाहता है, सत्व को समझना चाहता है, ऐसे पुरुष मिल जाते हैं तो वे संत बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे दुकानदार के कोई माल लेने वाला आ जाए बड़ा ग्राहक, तो उसके सामने वो दुकानदार अपनी चीज छिपा नहीं सकता, अब छिपा हुआ तो कहाँ देगा किसको और कौन लेगा, उसे ग्राहक कौन सा आएगा। कपड़े का भी व्यापारी है, एक कपड़े का ग्राहक पहुंचा, कपड़ा बताओ कि ये कपड़ा ऐसा, इनसे बढ़िया बताओ, बढ़िया बताया, बढ़िया लगा उस बढ़िया, अच्छा 5-7 थान ये रख दो इधर, ये बढ़िया है ये दे दो, اس سے بھی بڑھیا گا. ہاں اس سے بڑھیا بھی ہے لاٹ نہیں پایا اسے پانچ سات دس سال لڑکے اس سے بھی بڑھیا ہے گا. ہاں پندرہ سال یہ بھی رہے گا. اب اس سے بڑھیا ایسے جب گراہک ملے گا تو دکاندار چھپا کر رکھے گا کس وقت رکھے گا کیوں رکھے گا. جو ایسے گراہک ہے جو بڑھیا جو ہی ہو زیادہ خریدے سنکھیا میں تو جب دکاندار کے یہ سدھانت نہیں ہے مانیتا نہیں ہے کہ بڑھیا سے بڑھیا کپڑا چھپا کر رکھے. چھپا کر کس لیے رکھے؟ ایسا گراہک ملے گا کہاں؟ ایسے سنتوں کے سامنے جب سچے گراہک آ جائے تو گرو نگدشت شیشے سے گرو گوہ مت ہوتا گپت سے گپت بات کو بھی سنیہ رکھنے والے پریم سے آرام آدر سے سننے والے ہوتے ہیں. تو گرو نگدشت شیشے سے گرو کچھ کو بھی وہ بات بھی وہ کہہ دیں گے. ہے کس لیے؟ میں نے سنتوں سے سنا ہے, میں نے سنتوں کا سنگ کیا ہے, انہوں نے سنا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سے کوئی اصلی بات زبردستی کہلا لیتے ہیں. ہم کہنا نہیں چاہتے ایسی باتیں وہ کہلا لیتے ہیں. آ جاتے ہیں سامنے ہم کیا کریں, نکل جاتی ہے وہ بات. تو ایسی گوپنیہ رہس کی باتیں جہاں گراہک ملے وہاں آتی باتیں. تو ایسی اتکنٹھا آپ کے جگ جائے زور سے وہ جتنی زوردار ہوگی اتنا ہی مطلب اس کا اثر ہوگا اور اچھے اچھے مہاتما پروش وہاں آ جائیں گے. بھائی وہاں گراہک ہے, اس چیز کے لینے والے گرہن کرنے والے آدمی ہے یہاں, ایسا وچار کر کے یہ آ جائیں گے. تو سجنوں جس کے ہرے میں سچی لالسا ہوگی تو دہی کر دہی پر سچے سنے ہوں سوتے ہی مل سن کسو سنے ہوں دہی کر دہی پر سچ سنے. جس کا جس پر سچا سنے ہے پرماتما تتو کی پراپتی کے لیے سچی لگن ہے تو پرماتما کی پراپتی کرانے والے مہاپرش بھی وہاں آ جائیں گے. نہیں تو کہاں جائیں گے وہ, کس کو سنائیں گے بتاؤ؟ ان کو ایسا گراہک ملے گا کہاں؟ آپ سے آبت ہے بڑھیا سے بڑھیا پھل تیار ہوتا ہے تو ان کو بلانا نہیں ملتا. سگا ہوتا ہے توتا نگم کا پتروور گلتم پھلم سکھ مخا دمے تب جب سنگیتم. تو سکھ مخا سکھ ہے توتا, بڑھیا ہوتا ہے پھل اس کے تنچو مارتا ہے ارے پھل نہیں ملتا. ایسے نگم ترور گلتم یہ بھاگ ہوتا ہے نا تبت بھاگوتم رس مالیم مور ہو سگا بھری بھاگ ہوتا نگم ترور نگم وید شاستر ہے. ان کے ایک وکس لگا, ان کے وکس کے اوپر لگا ہوا پھل ہے بھاگوت روپی کیسا ہو. اور وہ بھی بھائی سکھ مکھا ہے جب تب جب سنگ ہوتا ہوں امت تب جب سنگ ہوتا ہوں امت روپی رس ہی رس بھرا ہے. پھل میں دو کسر ہوتی ہے, ایک چھلکا ہوتا ہے گٹھلی ہوتی ہے. اس میں نہ چھلکا ہے نہ گٹھلی ہے. امر تب جب سنگ ہوتا ہوں امر تب جب سنگ ہوتا کیول امر سے امر بڑا تب سے بھاگوتم رس مار بھاگ رس ہے پیو کب تک آ رہے ہم موکش بھجن مکتی ہو جائے تب بھی پیتے ہی رہو مور ہو رسیکا مور بھاو کا جو بھاو کا رسک ہے وہ اس کو پیے خوب موج سے. تو بھائی ایسا رس جا ملتا ہے اب جو بھی ہو بدمکھے فرنان نواس سورگے سدھا بستی گئی وبھا بدنتی. پنڈت لوگ کہتے ہیں یہ امرت کہاں رہتا ہے؟ تو کہتے ہیں سورگے سدھا بستی گئی وبھا بدنتی. اب جو سمندر میں امرت کہتے ہیں, چندرما میں امرت ہے, استری کے مخ میں امرت ہے, نال لوک میں امرت ہے, پرنام نواس سورگ میں امرت ہے. ایسا بہت اتنی دیکھ سمت رہتا ہے. پرنتو ان میں دیکھا ہم نے کھارم امرت اگر رہتا ہے تو کھارا کیوں پانی؟ سمندر کا پانی کھارا کیوں؟ جس میں امرت ہے میٹھا ہونا چاہیے کھارم. اور वो चंद्रमा में अमृत रहता है तो चंद्रमा घटता क्यों है? अमृत में तो अमर हो जाए है जैसा जैसा, उसमें कला घटती है तो कैसे मानेगी? उसमें अमृत है दधुमुख है उसके मुख में रहता है तो फिर विधवा हो जाती है, अमृत हो तो विधवा कैसे? अब धौ विधौ दधुमुख है फणिनांग निवास है नाग लोग मारे चाहे तो उन्हें विष कैसे रहा है? विष रहता है तो अमृत का विष होगा, अमृत कैसा है? तो स्वर्ग में अमृत रहता है तो खीने पुण्य मृत लोग कैसे हो जाए? अमृत रहता हो तो कहाँ रहता है अमृत? कहते हैं बस कंठे सुधा बसती वही भगवत जना नाम, भगवान के प्यारे संत है उनके कंठ में अमृत रहता है, जो कोई सुने तो अमर हो जाए वो, ये इसमें दोष नहीं आता। जैसे ओसाया ना अब्धौ विधौ बदमुखे परिणाम निवासे स्वर्गे पांच बताए, उसमें बताया क्षारं क्षयं पतिमृतम, क्षारं क्षयं पतिमृतम, और कैसा घटता है चंद्रमा और वो विधवा हो जाती है इसमें, और वन जहर रहता है सुरपंग और शरीर से भी पतंग हो जाता है। तो क्षारण क्षयम पतिमृतम क्षय 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 तो सुधा कहाँ रहता है? कि सुधा अमृत रहता है भगवान के प्यारे भक्त है, केवल भगवान के बारे में ध्यान में मस्त है और कोई इच्छा कभी स्वप्न में ही नहीं है, ऐसे जहाँ रहते हैं उनके कंठ में अमृत रहता है, उसमें कोई दोष नहीं आता। ये अवधौ विधौ माया ऐसा कोई दोष नहीं आता, तो वहां रहता है। तो भाई दुर्लभ बताए मैं, तीन दुर्लभ बताए, मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर में मुमुक्षा और फिर ऐसे पुरुषों का संग, तो ये दुर्लभ है। ऐसे पुरुषों का संग वो कैसे प्राप्त करें? मनुष्य ही तो हो गया और मुमुक्षा भी किंचित है ही, अब ऐसे क्या होता? अब सजावट लगाओ, सब तरह की चूर्ण वहां मिले तो पक्षी आ जाएंगे, सब तरह का प्रबंध हो, सब तरह की सत्संग होती हो तो वहां वे पुरुष भी आ जाए। माई ने कहा कि महाराज कब पधारो के बिना लिखे कागज, तो बिना लिखा कागज आ जाएगा तो महाराज खिंच जाएंगे लोग, वहां सुनेंगे कि महाराज वहां सत्चर्चा होती है, भगवान की चर्चा बड़ी विलक्षण होती है, सत्संग होती है, सत्कर्म होते हैं, सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, सत्संग होता है, चार सत है ये, चार सत बताए। सत्कर्म होते हैं जो कर्म शेष है वो सत्कर्म है, असत कर्म कौन सा है? जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाए वो असत कर्म, और स्वार्थ का त्याग अहंकार रहित और किया जाए वो सत्कर्म। सत्कर्म मिल जाएगा बहुत दुर्लभ है, सत्कर्म है। ऐसे ही सत्कर्म ऐसी सत्चर्चा, जिस चर्चा में कोई स्वार्थ नहीं, कोई अभिमान नहीं, किंचित मात्र भी कोई कपट नहीं, सरलता से सत्चर्चा और सच्चिंतन, जिसमें परमात्मा के सिवाय और कोई चिंतन नहीं, भगवान का ही चिंतन हो रहा है, ये मिल जाए फिर सत्संग होगा। सत्य जो सच्चे संतों में प्रेम रहेगा वो सत्संग है, ऐसा सत्संग मिले, ऐसी उत्कंठा हो तो फिर संत भी आ जाते हैं, सुनाने वाले आ जाते हैं, सुनने वाले भी आ जाते हैं, तो वहां कोई व्यापार है और कोई व्यापार ही नहीं है। तो ऐसी सत्संग जब होती है तो वहां महापुरुष संशय ये भी मिलता है। तो अपने ये भी अपने असल में नकली से ही नकली से कपड़े चलाए, असल से नकल भी, नकल से असल से ही नकल करते करते असली भी हो जाता है। तो अपने नकल करते हैं सत्संग की एक नकल, सत्चर्चा की सत्संग की एक नकल करते हैं, नकल से भी असल बन जाता है। नियत जिसकी ठीक होती है वहाँ असलियत आ जाती है, पहले वैसा न होने पर भी नियत अच्छी है ना तो भगवान देते हैं। सज्जन एक बात और सुना, आप ध्यान से सुने, जब सस्ती मिलती है ना चीजें तब हर एक जगह मिलती है, परंतु महंगी होने पर कहीं कहीं मिलती है सब जगह नहीं मिलती है, और वही चीज मैं भी। तो आज सच्चा चाहे सत्संग भी सत्संग महंग हो रहे हैं, सत्संग महंग हो रहा है, तो हरेक जगह मिलता नहीं। और एक मौका है कि महंगा होने पर ही वो माल गिरे सारा निकलता है, कभी भी मौका है तो अबार मौका है मनुष्य में। महाराज विचार ही नहीं है कि सत्संग करें, सतर्कता करें, सत्संग करें, सत्यंकन करें, ऐसी इच्छा नहीं, परवा ही नहीं है। मेरे पूछा, अरे भाई तुम्हारे गांव में संतों का भाव है क्या? उन्होंने कहा, महाराज भाव संतों का चक्के मन है, फिर भी लेवल नहीं है। चक्के मन संत है और संत जो लेवे कौन आप, तो ये आज का जमाना है, कहाँ मिलता पुरुष मिल रहे पुरुष, परंतु हमारा स्नेह वो सच्चा, तो सच्चा स्नेह होने पर मिलते, ऐसी बात है। चाहे दुर्लभ हो फल है, ऐसा हमारा विश्वास है, हमारे को विश्वास। तो अपने सच्ची लगन होगी तो लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए नारायण जिस लगन में तन मन विजय खो, तो सत्य लगन लगाओ, लगन होगी तो मिलेगा। ये तो करेंगे क्या हो, भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीज है वो उसको मिलेगी, जिसके लगन है सच्ची। माँ के पास बढ़िया से बढ़िया चीजें है, बच्चे घर जरूरत है तो और किसको देगी बताओ? अपने प्यारे लाल को नहीं देगी तो किसको देगी? उसका क्या काम करेगी, वो क्यों संचय किया है, वो तो उसका हक लगता है, अधिकार है। हमारे काम पर आज बच्चों में बोलो क्या सुना है, तो हमारी है वो दे दो, तो हमारी चीज हमारा हक लगता है। हम जब ग्राहक होते हैं उस पर हक लगता है, पैसे होते हैं जमाना है, थोड़े नंबरों में पास होने का मौका है। अब जब कोई चेत करे तो समय चूगी पुण्य का पछताने, ऐसा मौका आ गया है बढ़िया। इस मौके में जो लाभ उठाना चाहे भाई बहन तो लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो भाई समय चूगी पुण्य का पछताने, फिर क्या है, ये तो समय बीत जाएगा, बार बीत जाएगी बात रह जाएगी, ये बात तो समय बीत रहा है, ऐसे समय रहते रहते चेत करो अपने, जिससे उस तत्व को हम प्राप्त कर सके। केवल लालसा हमारी चाहिए, हमारी लालसा से सब कुछ हो जाता है। भगवान के दरबार में भी बढ़िया से बढ़िया चीजें होती है, वो भगवान को देनी पड़ती है, नहीं तो करेंगे क्या भगवान का, बढ़िया चीज होगा, ऐसा बड़ा सुंदर अवसर है। नारायण नारायण नारायण
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 24 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर भीनासर चतुर्मास के दौरान हुआ। राम।